ओम 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 विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के तत्व विवेक नामक प्रकरण में 43वां श्लोक। परा परात्मनोरेवम् युक्त्या संभावितैकता तत्त्वमस्यादिवाक्ये हि सा भागत्यागेन लक्ष्यते जगतो यदुपादानम् मायामादायतामसिम् निमित्तं शुद्धसत्त्वां ताम् उच्यते ब्रह्म तद्गिरा यदा मलिनसत्त्वां ताम् कामकर्मादिदूषिताम् आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनीम् अखण्डं सच्चिदानन्दम् महावाक्येन लक्ष्यते स्वयं इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयो त्यागेन भागयोरेकौ आश्रयो लक्ष्यते यथा माया विद्ये विहायैवम् उपाधि परजीवयोः अखण्डं सच्चिदानन्दम् परं ब्रह्मैव लक्ष्यते। प्रसंग बड़ा गंभीर चल रहा है। ये साधारण श्रोता से पकड़ में आना मुश्किल ही है, क्योंकि ये बताया पंचकोश विवेक के द्वारा जब आत्मा को अलग किया जाता है तो कोशों से अलग हुआ हुआ आत्मा वो ब्रह्म ही हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म ही कोशों में आकर आत्मा बना है, आत्मा कोशों से निकले तो ब्रह्म ही होगा। तो आत्मा ब्रह्म कैसे होगा भाई, तो उस बात को इस श्लोक के द्वारा समझा रहे हैं। परा पर आत्मनोरेवम्, परात्मा अपरात्मा। अब इसको यूं कहो अपर आत्मा और लोअर आत्मा है, अपर कोटि का आत्मा और लोअर कोटि का आत्मा, पर और अपर, ऊपर का आत्मा और थोड़ा नीचे का आत्मा। आप लोग कई ट्रेन में रिजर्वेशन करके जाते हो ना, तो सीट कैसे देते हैं, अपर बर्थ और लोअर बर्थ। ऐसे पर और अपर, या पर शब्द से परमात्मा, अपर शब्द से जीवात्मा। व्यवहार में जो शब्द प्रचलित हैं, उन प्रचलित शब्दों का अनुवाद करके यहां कहे हैं कि परात्मा यानी परमात्मा, अपरात्मा यानी जीवात्मा। परापरात्मनो एवं युक्तिया, एवं माने पहले निर्देशित, युक्ति माने पंचकोश विवेक अन्वय व्यतिरेक युक्ति, एवं युक्तिया युक्ति के द्वारा। पंचकोश से अलग करने पर क्या होता है, संभावित कथा युक्ति से सिद्ध किए गए जो एकता है उसको अब श्रुति से भी सिद्ध कर रहे हैं। अभी तक तो अन्वय व्यतिरेक युक्ति से जीवात्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध किया है, अब ये केवल युक्ति से सिद्ध नहीं है, ये श्रुति से यानी शास्त्र से भी ये बात सिद्ध है। ये बताने के लिए कौन से श्रुति से सिद्ध है, सामवेदीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद के महावाक्य। क्यों तो चार वेद में चार प्रधान उपनिषद हैं, और हर उपनिषद में, चारों वेद के चार उपनिषदों में चार महावाक्य हैं, और चारों महावाक्य परमात्मा और जीवात्मा दोनों की एकता को सिद्ध करते हैं। यहां केवल सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद की वह श्रुति को उदाहरण दिया, हालांकि आदिपद से अन्य अनुक्त श्रुतियों को भी ग्रहण कर लेना। तत्त्वमस्या आदि वाक्य ही, इनमें प्रमाण तत्त्वमसि आदि वाक्य प्रमाण है। ये तत्त्वमसि वाक्य कैसे जीवात्मा और परमात्मा की एकता सिद्ध करते हैं, सा भागत त्याग है ना लक्ष्य थे। भाग करते हैं पहले, फिर उसके बाद त्याग करते हैं। पहले वाच्यार्थ का भाग करते हैं, फिर उसमें से वाच्यार्थ का त्याग करते हैं। पदों का भाग करना भाग कहते हैं, और पदार्थ में विरोधांश का परित्याग करना त्याग कहते हैं। इसीलिए वेदांत में बार बार यह कहा जाता है कि सबसे पहले तो पद पदार्थ का ज्ञान होनी चाहिए, पहले पद का ज्ञान होनी चाहिए, फिर पद के अर्थों का ज्ञान होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं पद पदार्थ का ज्ञान। अब यहां तत्त्वमसि ये वाक्य लक्षणावृत्ति के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता कैसे करते हैं उसको पहले भाग कर रहे हैं, पदों का विभाजन करके उसका पद के वाच्यार्थ को समझाते हैं। अर्थ माने अक्षर समूह को पद कहते हैं, पद समूह को वाक्य कहते हैं। एक अक्षर या एक अक्षर से ज्यादा अक्षर जिनमें प्रयोग हो उसको पद कहते हैं, और एक पद या एक पद से ज्यादा पदों का प्रयोग जहां हुआ हो उसको वाक्य कहते हैं। वाक्य का अर्थ और पद का अर्थ में तालमेल होना चाहिए। पदों को मिलाकर कुछ और अर्थ हो और पद को अलग करने पर कुछ और अर्थ निकलता हो तो ये तालमेल नहीं होता। जैसे एक पद कह रहा है घट और दूसरा पद कह रहा है खोपड़ी, तो इसका क्या तालमेल होगा खोपड़ी का और घट का? दो पद को मिलाकर वाक्य बनाओगे उससे अर्थ क्या निकलेगा? इसलिए पद को कारक से जोड़कर, प्रत्यय आदि कारकों से जोड़कर तो जो वाक्य मिलाया बनाया जाता है उसको वाक्य कहते हैं। तो यहां तत् त्वम् असि, पहले तो ये तत्त्वमसि इस वाक्य के पदों का भाग करो, वाक्य में से पदों का विभाजन करो। तो जब पदों का विभाजन करते हैं तो तीन पद अलग अलग निकलता है। पहला पद है तत्, दूसरा पद है त्वम और तीसरा पद है असि। तो तीनों पद को मिलाकर एक वाक्य बना, वो वाक्य बना तत्त्वम असि। पहले पदों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। तो जिज्ञासु ने पूछा, महाराज तत् इस पद का अर्थ क्या है? तुम इस पद का अर्थ क्या है? असि इस पद का अर्थ क्या है? पूरे वाक्य का अर्थ, पूरे वाक्य का अर्थ तू आत्मा है, तू वह है, तू वह है, तत् संस्कृत पद है तत्, उसको हिंदी में अनुवाद करना हो तो तत् का हिंदी में अनुवाद होगा वह। संस्कृत पद है तुम, इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा तो तू तुम। संस्कृत पद है असि, इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा तो है हो इत्यादि, है हो। तो तीनों पद का अर्थ मिलाते हुए क्या निकला? वह तू है, वह तुम हो। अब सुनने वाला ये सोचेगा, तुम शब्द का अर्थ तो वो अपने को समझ रहा है, इतना हिंदी तो पढ़ता है। वह माने क्या, ये जिज्ञासा होगी कि नहीं। वह माने क्या, परोक्ष वस्तु। यह कहे होते तो प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में अर्थ निकलता, और जो वस्तु प्रत्यक्ष है उसके बारे में इतना संशय नहीं होता है, वो देख ही रहा है, अनुभव कर ही रहा है। लेकिन वह का अर्थ तो परोक्ष होता है, परोक्ष का अर्थ होता है जो अनुभव में नहीं आया है, जो जानने में नहीं आया, जो अनुभव में नहीं आया, जो ज्ञान का विषय अभी बना नहीं, उसको वह कहा जाता है। वह तू है, अब वो सोच रहा है कि वह का अर्थ क्या, वह का अर्थ घट है कि वह का अर्थ भैंस है कि वह का अर्थ गाय है कि वह का अर्थ कुत्ता है कि वह का अर्थ क्या है। अब पहले वह का अर्थ समझ में आवे तब न जाके स्वीकार करें ये वाक्य का, वह का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। कहने वाले ने कह दिया कि वह तू है, अब तुमने मान ली कि वह मैं हूं, बाद में पता चला वह का अर्थ तो गधा है, तो अर्थ क्या निकला, मैं गधा हूं, यह अर्थ निकलेगा कि नहीं। स्वीकार करने से पहले समझना जरूरी है कि नहीं, बोलो। किसी ने कह दिया वह तू है, अब वह का अर्थ क्या निकलेगा, स्वीकार कर ली, बाद में पता चला वह का अर्थ था राष्ट्रपति है भारत का, वह तब तो मजा आ गया, इसका मतलब राष्ट्रपति मैं हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, अर्थ निकला। लेकिन अर्थ समझे बिना पहले स्वीकार करोगे, बाद में वह का अर्थ कुत्ता निकल गया तो क्या कर लोगे, वह का अर्थ गधा निकल गया तो क्या करोगे, वह का अर्थ बिल्ली निकल गया तो क्या कर लोगे। तो स्वीकार करना घाटा पड़ेगा कि नहीं, बोलो, नुकसान होगा कि नहीं। तो बोले वह का अर्थ समझाओ महाराज हमको, वह का माने क्या, तभी हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बोले वह का अर्थ तू समझ ले, तत् का अर्थ तू समझ ले, वह माने तत्। यहां तत् का अर्थ इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, 44वें श्लोक से तत् इस पद का अर्थ बता रहे हैं। जगतो यदुपादानं मायां आदाय तामसिम, ये आप लोगों ने पहले सुन चुके हो। माया के तीन भेद बताया गया पहले, है ना, आप लोग सुन चुके हो। माया के तीन भेद, विशुद्ध सत्व, मलिन सत्व और तमोगुण। विशुद्ध सत्व एक भेद, मलिन सत्व दूसरा भेद और तमोगुण तीसरा भेद। ये तीन भेद माया के आप लोगों ने पहले सुन चुके हो। इन तीन भेद में विशुद्ध सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो विशुद्ध सत्व सहित प्रतिबिंब का नाम ईश्वर, ये व्याख्या कर चुके हैं। मलिन सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, मलिन सत्व सहित प्रतिबिंब का नाम प्राज्ञा, ये आप लोगों ने सब सुन चुके हो। और तम गुण से तम प्रधान प्रकृति तद्भोगा ईश्वराज्ञया, वियत पवन तेजोम्बो भूवो भूतानि जगिरे, तो तम प्रधान प्रकृति से परमात्मा ने आकाश आदि पंच सूक्ष्म महाभूतों को बनाया। तब तम प्रधान प्रकृति जगत का आकाश से लेकर शरीर पर्यंत स्थूल और सूक्ष्म जगत का उपादान कारण हुआ। विशुद्ध सत्व प्रधान माया जगत का निमित्त कारण हुआ। ब्रह्म का प्रतिबिंब सब जगह जरूरी है, प्रतिबिंब के बिना माया का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए शुरू में आप लोग सुन चुके हो, चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रज सत्वगुणा प्रकृतिर द्विविधा चसा। सच्चिदानंदमय जो ब्रह्म है उसके प्रतिबिंब से युक्त हुई माया तीन प्रकार की है, विशुद्ध सत्व माया, मलिन सत्व माया और तमः प्रधान माया। विशुद्ध सत्व माया में ब्रह्म का प्रतिबिंब ईश्वर, मलिन सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब प्राज्ञ जीव और तमः प्रधान प्रकृति में ब्रह्म का प्रतिबिंब जगत। तो यहां तत् पद के अर्थ को बता रहे हैं। तत्पद का अर्थ क्या है? तत्पद से अर्थ हमें क्या ग्रहण करें, क्या ग्रहण अर्थ लें, हम क्या समझें? तो बोले तत्पद से ये दो अर्थ समझ लो जो पहले वर्णन कर चुके हैं। जगतो यद उपादानम मायाम आदाय तामसिम, तामसिक माया को लेकर जो ब्रह्म जगत का उपादान कारण बना, विशुद्ध सत्व माया को लेकर जो ब्रह्म जगत का निमित्त कारण बना। समझे कि नहीं? आटे में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो रोटी का उपादान कारण बना, ध्यान देना वो फिर है। तुमको और दूसरी भाषा से मैं समझा दूं, जिसको तुम आटा कहते हो ना वो रोटी का उपादान कारण है, ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं है? और जिसको तुम खम्मण कहते हो उसका उपादान कारण क्या होगा? चने का आटा, वो खम्मण का उपादान कारण होगा। और गेहूं का आटा रोटी का उपादान कारण होगा। अब यूं समझ लो, आटे में ब्रह्म का माने प्रतिबिंब पड़ा तो रोटी का उपादान कारण बना। चैतन्य के बिना तो आटा ही सिद्ध नहीं होगा ना। आटा सिद्ध करने के लिए अस्तित्व चाहिए कि चाहिए? नहीं, आटे में आटा है जो कह रहे हो ना, वो जो है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है। आटा तो आटा हो गया, है क्या है? ब्रह्म का प्रतिबिंब है। ब्रह्म का प्रतिबिंब जब आटे में पड़ता है तब वो आटा रोटी का क्या होता है? उपादान कारण होता है, हाँ? अब ब्रह्म का प्रतिबिंब शरीर में पड़ता है तो वो शरीर निमित्त कारण बनता है रोटी का। देखो आपको बड़ा अटपटा लग रहा है वही चीज। ब्रह्म का प्रतिबिंब जब आटे में पड़ा तो प्रतिबिंब सहित आटे को आप कहोगे आटा हाय, कहोगे कि नहीं? आटा आटा हाय ब्रह्म का प्रतिबिंब। अब इसी प्रकार से ब्रह्म का प्रतिबिंब किसी एक शरीर में पड़ा तो रोटी कौन बनाएगा? तो बोले मैं बनाऊंगी। रोटी बनाने वाला कोई है? तो बोले तुम क्या कहोगे? है आटा तो है, रोटी बनाने वाला कोई है? वहां पर भी है जोड़ा कि नहीं बोलो? तो तुम लोग रोटी बनाने जानते होंगे तो क्या कहोगे? हाय कौन है? बोले मैं हूं। एक शरीर में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो मैं हूं रोटी बनाने वाली, तुमने कहा कि नहीं बोलो? तो तुम क्या हो गई? निमित्तकार। आटा और तुम दोनों मिलकर क्या बना? रोटी बना। तत्पद का अर्थ क्या निकला? सत्व गुण में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो वह निमित्त कारण बना, तमोगुण में ब्रह्म का कारण पड़ा तो उपादान कारण बना जगत का। वो दोनों कारणों को तत्पद के द्वारा व्याख्या की गई है। तत्पद का अर्थ दो हो गए, कौन कौन? ये जगत का उपादान कारण और जगत का निमित्त कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही है महाराज? बोले हां, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। वही ब्रह्म तमोगुण में प्रतिबिंबित होकर उपादान कारण बन गया, वही ब्रह्म सत्वगुण में प्रतिबिंबित होकर निमित्त कारण बन गया। दोनों कारण को बताने के लिए तत्पद का प्रयोग किया। तत्पद के द्वारा जो कारण को बताया जाता है वह अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहलाता है। वो बात ये 44वें श्लोक के द्वारा विद्यारण्य मुनि जी ने समझा दिया। तो देखो, एक बात आप समझ लेना, बनने वाला भी ब्रह्म, बनाने वाला भी ब्रह्म, खाने वाला भी ब्रह्म है। बनने वाला भी ब्रह्म, रोटी बना तो रोटी क्या हुआ? ब्रह्म। किससे बना? ब्रह्म से बना। किसने बनाई? ब्रह्म ने बनाई। किसके लिए बनाई? ब्रह्म के लिए बनाई। तो गीता का श्लोक याद कर लो भाई, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भाई, ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़े बिना जगत में कोई भी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, चाहे वह कर्ता हो, चाहे वह भोक्ता हो, चाहे वह क्रिया हो, चाहे वह कर्म हो, सभी उसी का खेल है। यहां समझाने के लिए तत्पद का अर्थ क्या सिद्ध हुआ? तत्पद का अर्थ क्या सिद्ध हुआ? अभिन्न, अभिन्न माने दोनों एक ही, निमित्त कारण और उपादान कारण। सामान्य व्यवहार में निमित्त कारण भिन्न होता है, उपादान कारण भिन्न होता है। सामान्य व्यवहार में उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है। लेकिन यहां जगत के बारे में निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही है। सो कैसे संभव हुआ? तो मुंडक उपनिषद में इसका उत्तर दे दिया है। यथा पृथिव्याम संभवती औषधयः संभवती, यथा पुरुषात् केशलोमानि संभवती। ये देखो, तुम अपने हाथ में तुम्हारे नंग है, नख है ना, नख का उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण कौन है? तुम खुद नख के उपादान कारण भी हो, तुम खुद नख के निमित्त कारण भी हो कि नहीं? तुम जब मां के गर्भ से आए थे तो मुख में दांत थे, बाद में दांत आए, उस दांत का उपादान कारण कौन है, निमित्त कारण कौन है? बोलो, तुम खुद उस दांत के उपादान कारण भी हो, तुम खुद उस दांत के निमित्त कारण भी हो कि नहीं? अब ये देख लो, अंतर इतना ही है, शरीर दांत का उपादान कारण है, चैतन्य दांत का निमित्त कारण है। और यहां जड़ शरीर दांत का उपादान कारण, चैतन्य आत्मा दांत का निमित्त कारण, लेकिन चैतन्य आत्मा और जड़ शरीर दोनों अभिन्न होकर दांत के उपादान कारण और निमित्त कारण बन गए कि नहीं? दोनों अलग अलग होते हैं? दोनों अलग अलग होते, तुम्हारा जड़ शरीर अलग होता और तुम चैतन्य अलग होते तो मुख में दांत आते नहीं आते? इसी तरह यथोरुण नाभि सृजते गृणते च। अब रेशम का कीड़ा रेशम बनाता है, धागा बनाता है, उपादान कारण कौन है, निमित्त कारण कौन है? कीड़ा स्वयं उपादान कारण भी है, उस रेशम के धागे के बारे में कीड़ा स्वयं उपादान कारण भी है, कीड़ा स्वयं निमित्त कारण भी है। इसीलिए क्या हुआ, कीड़ा अभिन्न निमित्त उपादान कारण हो गया। वहां निमित्त कारण उसका कीड़े का शरीर, समझे कि नहीं? उपादान कारण कीड़े का शरीर, निमित्त कारण कीड़ा चैतन्य खुद। अब कीड़ा चैतन्य उस शरीर से अलग होता तो धागे का निर्माण होता? जड़ शरीर उस चैतन्य कीड़े से अलग होता तो धागे का निर्माण होता? जड़ शरीर और चैतन्य आत्मा दोनों मिलने के कारण क्या हुआ, धागे के लिए वह कीड़ा, जड़ और चैतन्य उभय रूप जो कीड़ा अभिन्न निमित्त उपादान कारण बना। इसी तरह तम गुण में प्रतिबिंबित ब्रह्म और सत्व गुण में प्रतिबिंबित ब्रह्म, तमोगुण में प्रतिबिंबित ब्रह्म जगत का उपादान कारण बना, सत्वगुण में प्रतिबिंबित ब्रह्म जगत का निमित्त कारण बना, दोनों मिलकर जगत का उपादान कारण, निमित्त कारण, अभिन्न निमित्त उपादान कारण बन गया। उसको बताने के लिए तत्त्वमसि इस वाक्य में तत् पद का प्रयोग किया है। अब ये हो गया तो फिर तत्पद का अर्थ कोई गधा या घोड़ा या कुत्ता नहीं होगा। क्या हुआ, तत्पद का अर्थ आपके दिमाग में क्या आया, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये उपादान कारण भी निमित्त कारण भी जो है वह तत्पद का अर्थ है, समझे कि नहीं? जगतो यदुपादानम मायाम आदाय तामसिम निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्चते ब्रह्म तद गिरा, तत्पद का वाच्यार्थ हुआ ये। गिरा अर्थ, गिरा माने वाणी, वाणी का अर्थ वाच्यार्थ हुआ। तत्पद के ये वाच्यार्थ हुआ। किसी भी पद के तीन अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, गौण अर्थ और लक्ष्यार्थ। किसी भी पद का तुम कुछ भी शब्द बोलो, कुछ भी शब्द तुम्हारे मुख से निकलेगा तो उस शब्द का तीन अर्थ होंगे। वाच्यार्थ होगा, गौणार्थ होगा और लक्ष्यार्थ होगा। जैसे सामने एक गधा खड़ा था, तुमने उस गधे को ये गधा है कह दिया, उस वाक्य का अर्थ क्या निकला? गधा। वो वाक्य प्रयोग क्या है? गधा है। तुरंत ही थोड़ी देर के बाद तुम्हारा बेटा सामने खड़ा था और ठीक उसी समय में उस बेटे ने गलती कर ली थी, तो कोई पूछेगा कि ये कौन है? तुम कहो गधा है। अब क्या अर्थ निकला बाबा? हैं? दोनों अर्थ एक ही निकले। गधे के बारे में गधा कहा, वो तो वाच्यार्थ हो गया। अपने बच्चे के बारे में गधा कहा, वो वाच्यार्थ नहीं होगा। वो क्या अर्थ होगा? गौणार्थ। गौणार्थ माने गधे में जो मूर्खता आदि है, जड़ता है, बात न समझना आदि है, वो इसमें भी वो गुण हैं कुछ कुछ, तो वो गुण के तरफ संकेत कर रहा है बाप। जैसे सामने वाला गधा, वो तो बाद में वास्तव में गधा और गधी का बच्चा है, इसलिए वो गधा है, और तुमने वाक्य प्रयोग कर दिया अपने बेटे के इशारा करके, ये गधा है, तो क्या उसका बा और माँ बाप, माँ बाप दोनों के गधे से पैदा हुए हैं? फिर तुमने उसको क्यों कह दिया गधा? तो वो वाच्यार्थ नहीं है, वो है गौणार्थ। ये अर्थात ये इसमें कुछ गधापना है, मूर्खपना है, जड़पना है, ये अर्थ लगेगा। इन है तो इंसान, आकार तो मिलता नहीं है। तुमने उसको बेटे को कहा गधा है, तो उसका फोटो खींचो, फोटो किसका आएगा? इंसान का कि गधे का? तुमने पहले को कहा गधा, उसका फोटो खींचो, तो फोटो किसका आएगा? इंसान की गधे का है। तो जबकि वाक्य दोनों में एक ही प्रयोग हुआ, लेकिन अर्थ अलग निकले। उसमें वाच्यार्थ प्रयोग हुआ है, इसमें गौणार्थ प्रयोग हुआ। और इसी तरह संसार में, ये संसार में सब गधे हैं, तुमने प्रयोग किया, मूड खराब था और कह दिए संसार में सब गधे, इसका मतलब संसार में तुम भी हो, हो कि नहीं? संसार में सब गधे हैं तो तुम भी हो, तुम्हारे गुरु भी हैं, हैं कि नहीं बोलो? और तुमने क्या कहा? सब गधे हैं। तो सब गधे हैं तो वहां लक्ष्यार्थ होगा। लक्षणावृत्ति से किसको कहा जा रहा है? तो वाच्यार्थ, गौणार्थ, लक्ष्यार्थ। बोलने में स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। अब अर्थ ग्रहण करने में भी स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति ये तीन अर्थों में से कोई भी एक अर्थ ग्रहण कर सकता है। केवल बच्चा अर्थ ग्रहण करके सुखी या दुखी हो सकता है, गौण अर्थ प्रयोग करके सुखी या दुखी हो सकता है, लक्ष्यार्थ प्रयोग करके सुखी या दुखी हो सकता है। इसीलिए वाक्य एक हैं, अर्थ तीन हैं। तो यदि तुम समझदार हो तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले वो अर्थ प्रतिकूल तुम्हारा जा नहीं सकता, यदि तुम समझदार हो तो। और यदि तुम मूर्ख हो तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले वो प्रतिकूल ही जाएगा, अनुकूल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वाक्य एक है, अर्थ तीन है। अब क्या पता तुम कौन सा अर्थ ग्रहण कर लो और किस मूड में चले जाओ, है? तुम स्वतंत्र हो। लक्ष्यार्थ ग्रहण करके तुम प्रसन्न भी हो सकते हो, लक्ष्यार्थ ग्रहण करके तुम दुखी भी हो सकते हो, वाच्यार्थ ग्रहण करके तुम प्रसन्न भी हो सकते हो, वाच्यार्थ ग्रहण करके तुम दुखी भी हो सकते हो। ये व्यवहार में भी चलता है, व्यवहार में भी इस प्रकार से वाच्यार्थ, गौणार्थ, लक्ष्यार्थ, ये तीन अर्थ व्यवहार में भी चलता है और यही तीन अर्थ शास्त्र में भी चलता है। तो इस बात को यहां समझा रहे हैं। गिरा शब्द का अर्थ केवल वाच्यार्थ लो, अभी तत्पद का वाच्यार्थ हुआ अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अब त्वम पद का वाच्यार्थ क्या होगा महाराज? यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वम पदेना तदोच्यते। वही आदत्ते परम ब्रह्म, यदा माने जिस समय मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम ताम काम कर्म आदि दोष से दूषित हुई हुई मलिन सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, तब उस ब्रह्म को किसको काम कर्मादि दूषित मलिन सत्व सहित ब्रह्म को त्वम पद के वाच्यार्थ से कहा जाएगा। अब ये घुमाकर अर्थ हुआ है, तुमको सीधा सीधा अर्थ बता दें। तत्पद का अर्थ ईश्वर, सर्वज्ञ ईश्वर। तम पद का अर्थ अल्पज्ञ जीव। ये सब घुमाकर क्या हुआ? तत्पद का वाच्यार्थ सर्वज्ञ ईश्वर, तम पद का वाच्यार्थ अल्पज्ञ जीव। असी पद का अर्थ क्या हुआ महाराज? है तो इसका अर्थ क्या हुआ सब मिलाकर? जो सर्वज्ञ है वो अल्पज्ञ है, ये अर्थ निकला तत्त्वमसि का वाच्यार्थ। हां, जो सर्वज्ञ है वह अल्पज्ञ है और जो अल्पज्ञ है वह सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ और अल्पज्ञ दोनों एक है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने एक जगह कहा है उनके पास कोई एक लड़का गया तो उनसे पूछा स्वामी जी से, महाराज आप बार बार कहते हो परमात्मा ने जगत बनाया, परमात्मा ने जगत बनाई, वो परमात्मा कहां है कैसा है हमें बता दीजिए महाराज। तो स्वामी जी ने कहा, कहते हैं वो परमात्मा यही है और वो परमात्मा तुम हो। जिसने जगत बनाई वो परमात्मा यही है और वो तुम हो। तो कहते हैं वो बिगड़ गया, नाराज हो गया, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूं, मैं तो एक संसारी हूं, जीव हूं। अच्छा बेटा, तुम परमात्मा नहीं हो सकते, तो वो परमात्मा मैं हूं। बोले आप कैसे परमात्मा हो सकते हो, अब इसका क्या तुक है भाई, तुमको कहा तुम हो, तुम अपने को भी मानने को तैयार नहीं, और जब तुम अपने को नहीं मानते हो तो फिर मुझे मानो, मैं हूं और मुझे भी मानने को तैयार नहीं, फिर हम तुमको कैसे बताएं कि परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा है। परमात्मा कैसा है, बोले तुम्हारा जैसा है। मैं कैसा हूं, बोले परमात्मा जैसे हो। परमात्मा और मैं कैसे हो, बोले दोनों एक जैसे हो। खत्म बात, तत्त्वमसि तो यही है ना। अब तुम ना तुम अपने को परमात्मा मानने को तैयार हो, ना मुझे परमात्मा मानने को तैयार हो, तो हम तुम्हें कैसे बताएं कि परमात्मा यह है। हम दुनिया में जिसको भी दिखाएंगे तुम उसको परमात्मा स्वीकार करने को राजी नहीं हो, तो हम तुम्हें कैसे बताएंगे कि यह परमात्मा है, बोलो। और हम जिसको दिखाएंगे उसको स्वीकार कर लो तो परमात्मा वहीं मिल गया है? तुम्हें मान लो ना कि भाई स्वामी जी ने कहा कि मैं परमात्मा हूं, मैंने जगत बनाई, मान लो, खत्म हो गई बात, झगड़े खत्म। तुम अपने को भी नहीं मानते हो, दूसरों को भी नहीं मानते हो, कैसे काम चलेगा। तो यहां यही है, तत्त्वम असि का अर्थ हुआ जो सर्वज्ञ है वही अल्पज्ञ है, जो अल्पज्ञ है वही सर्वज्ञ है। अब इस वाक्य का वाच्यार्थ विचार करते हैं तो बिल्कुल बेतुका अर्थ निकल रहा है। समझ में आई कि नहीं, सर्वज्ञ अल्पज्ञ कैसे हो सकता है, अल्पज्ञ सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, विरोधाभास है कि नहीं, और दोनों विरोधाभासी एक कैसे हो सकते हैं भाई। तो वाच्यार्थ से तो इसका अर्थ लगेगा नहीं। तो जहां वाच्यार्थ से अर्थ नहीं लगता है वहां गौणार्थ दूसरा विकल्प प्रयोग करो, गौणार्थ से भी अर्थ नहीं निकला है तो वहां लक्ष्यार्थ का तीसरा विकल्प प्रयोग करो। और लक्ष्यार्थ में भी तीन भेद हैं, लक्ष्यार्थ में भी तीन भेद हैं, जहद लक्षणा वाला लक्ष्यार्थ, अजहत लक्षणा वाला लक्ष्यार्थ, भागत त्यागात्मिका लक्ष्यार्थ, जहत अजहत उभय रूप लक्ष्यार्थ। व्यवहार में इस शब्द हम प्रयोग करते हैं, जहत लक्षणात्मक लक्ष्यार्थ का भी हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, अजहत लक्षणात्मक लक्ष्यार्थ का भी हम प्रयोग करते हैं, जहद अजहद उभय लक्षणात्मक लक्ष्यार्थ का भी हम प्रयोग किया करते हैं। दृष्टांत के द्वारा हम इसको कल समझाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।